पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। अल्बनीसी सरकार का कहना है कि 2026 की जनगणना में जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन से जुड़े सवाल भी शामिल किए जाएंगे। पहले सरकार ने इन सवालों को अत्यधिक जटिल और संभवतः विवादास्पद बताते हुए शामिल नहीं करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन सामुदायिक संस्थानों से लगातार आ रहे दबाव के बीच अब सरकार ने इन सवालों को अगली जनगणना में शामिल करने का निश्चय किया है। इक्वालिटी ऑस्ट्रेलिया की मुखिया एना ब्राउन का कहना है कि ये निर्णय सबसे समझदार, दूरदर्शी और नैतिक निर्णय है, क्योंकि इस जानकारी को जनगणना में शामिल ना करने का अर्थ होता कि कुछ सबसे संवेदनशील समुदायों के बारे में पूरी जानकारी ही प्राप्त नहीं हो पाती और राष्ट्रीय डेटा अपूर्ण रह जाता। कोषाध्यक्ष जिम चामस का कहना है कि सटीक सवालों का चयन और निर्णय ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स करेगा। वहीं लेबर पार्टी ने गठबंधन के नए चुनाव विज्ञापन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उनकी न्यूक्लियर योजना का खर्च 600 बिलियन डॉलर का होगा, जिससे ऑस्ट्रेलियाई घरों का बिजली का बिल $1,000 प्रति वर्ष तक बढ़ सकता है। फेडरल सरकार के नए आंकड़े दर्शाते हैं कि अगर 15 साल और कोयले और गैस का इस्तेमाल किया गया तो इनसे होने वाले उत्सर्जन में 2050 तक 1.7 बिलियन टन तक का इजाफा हो सकता है। लेकिन सरकार का कहना है कि अगर गठबंधन के न्यूक्लियर प्लान को कार्यान्वित किया गया तो मौजूदा उत्सर्जन ही 4 गुना हो जाएगा। विपक्ष कोषाध्यक्ष एंगस टेलर ने स्काई एजेंडा से कहा कि लेबर के पास ऊर्जा नीति पर बात करने की विश्वसनीयता ही नहीं है। वहीं साउथ ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित सोशल मीडिया कानून के तहत 14 साल से कम के बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से बैन किए जा सकते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर पीटर मालिनोस्किस का कहना है कि साक्ष्य दर्शाते हैं कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए हानिकारक है और माता पिता बच्चों को इसकी लत लगने से परेशान भी हैं। प्रस्तावित कानून में एक नियामक नियुक्त किया जाएगा जो इन कानूनों के पालन पर नजर रखेगा और कोताही होने की स्थिति में जुर्माना भी लागू करेगा। अगर बड़े उल्लंघन पाए जाते हैं तो नियामक के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार भी रहेगा। प्रस्तावित कानून के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को 14 से 15 साल के बच्चों को अकाउंट बनाने देने के लिए माता पिता से अनुमति लेनी होगी। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गाजा में इजराइल और हमास का युद्ध अपने 12वें महीने में प्रवेश कर चुका है। इतने लंबे संघर्ष के बाद भी ना ही इस फिलिस्तीनी राज्य के लिए शांति की कोई उम्मीद दिख रही है और ना ही इजरायली बंधकों के घर लौटने की कोई राह ही नजर आ रही है। दोनों पक्षों ने अपने पास बंधक बना रखे हैं जिनकी घर वापसी मुश्किल दिख रही है, क्योंकि कोई भी पक्ष समझौते के लिए तैयार नहीं है। हमास की मांग है कि इजराइल पूरी तरह से पीछे हट जाए, जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा और इजिप्ट की सीमा पर अपने सैनिक तैनात करना चाहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, कतर और इजिप्ट मध्यस्थता कर युद्ध विराम के प्रयास कर रहे हैं। गाजा के प्रशासन का कहना है कि अब तक इस युद्ध में कम से कम 40,940 फिलिस्तीनी लोगों की मृत्यु हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय का कहना है कि इनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। और अब अंत में खबरें भारत से। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार यानी आज से सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की 6 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य समग्र द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय तथा वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श करना होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार वे सबसे पहले सऊदी अरब की राजधानी रियाद की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे, जहां वे मुख्य रूप से भारत खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेंगे। रियाद में श्री जयशंकर के कई GCC सदस्यों और देशों के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय बैठक करने की भी संभावना है। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत और GCC के बीच गहरे और बहुआयामी संबंध हैं, जिनमें व्यापार और निवेश, ऊर्जा, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। GCC एक प्रभावशाली समूह है जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में GCC के देशों के साथ भारत का कुल व्यापार 184.46 अरब अमरीकी डॉलर का रहा था। रियाद से जयशंकर 10 से 11 सितंबर तक 2 दिवसीय यात्रा पर जर्मनी में बर्लिन जाएंगे। इसी के साथ 8 सितंबर 2024 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। डीजे वृशाली को इजाजत, नमस्कार।